लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 10 अक्टूबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेली ए सोरेल्ले, बोंजोर्नो।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
ला लिटुर्जिया दी ओजी ची प्रोपोने लिंकोंट्रो त्रा जेसू e un uomo che possedeva molti beni.
आज की धर्मविधि यीशु और एक धनी व्यक्ति के बीच मुलाकात को प्रस्तुत करता है, जिसके पास बहुत सारा धन था और जिसे इतिहास में एक धनी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। हम उसका नाम नहीं जानते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार वास्तव में उसके बारे इस प्रकार बतलाता है,
senza dirne l'età e il nome,
जिसमें ना तो उम्र और ना ही नाम का जिक्र है, और सलाह देता है कि उस व्यक्ति में हम प्रत्येक अपने आप को एक दर्पण के रूप में देख सकते हैं। निश्चय ही यीशु के साथ उसकी मुलाकात विश्वास की परख करने का अवसर देता है। संत पापा ने कहा कि मैं इसको पढ़कर अपने विश्वास की जांच कर रहा हूँ। वह व्यक्ति सवाल से शुरू करता है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हम उसके द्वारा प्रयोग की गई क्रिया पर ध्यान दें, प्राप्त करने के लिए करना चाहिए आदि। उसकी धार्मिकता है एक कर्तव्य, प्राप्त करने के मतलब से करना, मैं कुछ करता हूँ ताकि मैं अपनी आवश्यकता को प्राप्त कर सकूं। संत पापा ने इसे ईश्वर के साथ व्यापारिक संबंध कहा। दूसरी ओर विश्वास ठंडा और मशीनी संस्कार, मैं करूंगा तभी पाऊंगा नहीं है, यह स्वतंत्रता और प्रेम का सवाल है। संत पापा ने विश्वासों को आत्म जांच हेतु प्रेरित करते हुए कहा, यहाँ पहला आत्म जांच है कि मेरे लिए विश्वास क्या है। यदि यह एक कर्तव्य या आदान प्रदान का मुद्रा है तो हम भटक रहे हैं, क्योंकि मुक्ति एक वरदान है ना कि कर्तव्य। यह मुफ्त है और खरीदा नहीं जा सकता। सबसे पहले हमें वाणिज्यिक और यांत्रिक विश्वास से मुक्त होना है, जो एक पिता के रूप में नहीं बल्कि लेखा रखने वाले ईश्वर की झूठी छवि को प्रस्तुत करता है। हम जीवन में कई बार व्यापारिक विश्वास के संबंध को जीते हैं, मैं ऐसा करता हूँ और तब ईश्वर मुझे यह प्रदान करते हैं। दूसरे चरण में यीशु उस व्यक्ति को ईश्वर के सच्चे चेहरे को प्रस्तुत कर मदद करते हैं। पाठ बतलाता है कि उन्होंने उसे ध्यान से देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया। संत पापा ने कहा कि यही ईश्वर का गुण है और यही विश्वास का जन्म एवं पुनर्जन्म होता है। एक कर्तव्य से नहीं, कुछ कर देने से नहीं अथवा कीमत चुकाने से भी नहीं, बल्कि प्रेम की नजर से स्वीकार किए जाने से। इस तरह ख्रिस्तीय जीवन सुंदर बनता है। यह हमारी क्षमताओं एवं योजनाओं पर नहीं बल्कि ईश्वर की नजर पर आधारित है। संत पापा ने कहा,
La tua fede, la mia fede, è una fede stanca?
क्या आपका विश्वास थक चुका है और क्या आप इसे मजबूत करना चाहते हैं? ईश्वर की नजर की खोज करें, आराधना के लिए समय दें, पाप स्वीकार संस्कार में अपने आप को क्षमा करने दें और क्रूस के सामने खड़े हों। संक्षेप में, उन्हें खुद को प्यार करने दें, यही विश्वास की शुरुआत है जो एक पिता हैं और हम उन्हें खुद को प्यार करने दें। प्रश्न और नजर के बाद तीसरा और अंतिम चरण है यीशु की ओर से निमंत्रण, जो कहते हैं तुम में सिर्फ एक चीज की कमी है। संत पापा ने कहा उस धनी व्यक्ति में किस चीज की कमी थी? उन्होंने कहा दान की, मुफ्त में देने की कमी थी। जाओ तुम्हारे पास जो है उसे बेचकर गरीबों को दे दो। शायद इसी चीज का अभाव हम में भी है, बहुधा हम बहुत कम देते हैं, जबकि यीशु हमें जितना संभव हो उतना देने का निमंत्रण देते हैं। कितने बार हम कर्तव्यों, नियमों और कुछ प्रार्थनाओं को पूरा कर संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि ईश्वर जिन्होंने हमें जीवन दिया है हमें जीवन को उठाने के लिए कहते हैं। इस तरह आज के सुसमाचार पाठ में कर्तव्य से दान करने के चरण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यीशु आज्ञाओं की याद करते हुए कहते हैं हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो आदि, और अंत में सकारात्मक प्रस्ताव की ओर बढ़ते हैं, जाओ बेचो दे दो, मेरा अनुसरण करो। विश्वास केवल नहीं तक सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि ख्रिस्त जीवन हाँ है, प्रेम का हाँ। तब संत पापा ने कहा प्यारे भाइयों एवं बहनों, दान के बिना एक विश्वास एवं एक विश्वास के बिना दान एक पूर्ण विश्वास नहीं है, यह एक कमजोर विश्वास है, एक बीमार विश्वास। हम इसकी तुलना पौष्टिक किंतु स्वाधीन भोजन या एक खेल जिसको अच्छी तरह खेला जाए किंतु एक भी गोल ना हो उससे कर सकते हैं। यदि नमक नहीं है तो खाना फीका पड़ जाएगा। बिना उफार, बिना दान, बिना उदारता के विश्वास हमें अंत में उदास बना देगा, ठीक उसी व्यक्ति की तरह जिस तरह उसने अपने ऊपर यीशु की प्रेमी नजर को देखा किंतु उसका चेहरा उतर गया और वह उदास होकर घर लौट गया। संत पापा ने कहा आज हम अपने आप से पूछ सकते हैं मेरा विश्वास कहाँ खड़ा है? क्या मैं उसे एक मशीनरी चीज, कर्तव्य का संबंध या ईश्वर पर रुचि के रूप में महसूस करता हूँ? क्या मैं इसे यीशु का अपने ऊपर नजर डालने और प्रेम करने देने के रूप में याद करता हूँ? अपने आप को यीशु द्वारा देखे जाने और प्रेम करने दें, उनसे प्रभावित होकर क्या मैं मुफ्त में, उदारता पूर्वक और पूरे हृदय से अपने आप को समर्पित कर सकता हूँ? धन्य कुंवारी मरियम जिन्होंने ईश्वर को पूर्ण रूप से हाँ कहा, लेकिन के बिना हाँ। संत पापा ने कहा लेकिन के बिना हाँ कहना आसान नहीं होता, किंतु कुंवारी मरियम ने लेकिन के बिना हाँ कहा। आइए हम जीवन को दान करने की सुंदरता का आनंद लें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरिती का आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nunciabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने नए धन्यों की याद करते हुए कहा आज मैं सहर्ष नए धन्यों की उद्घोषणा की घोषणा करता हूँ। कल नेपल्स में मरिया लोरेंसा लोंगो की धन्य घोषणा हुई, जो 16वीं शताब्दी में एक पत्नी और परिवार की माता थीं। एक विधवा के रूप में नेपल्स में उन्होंने लाइलाज का एक अस्पताल और गरीब क्यारा की कपोचिन की स्थापना की। वे एक महान विश्वास की महिला थीं और एक प्रार्थना में जीवन व्यतीत की। उन्होंने गरीबों और पीड़ितों की हर संभव मदद की। उसके बाद संत पापा ने कहा आज कलाब्रिया के त्रोपिया में पौत्र हृदय के ऑपलेट के संस्थापक डोन फ्रांचेस्को मोत्तोला की धन्य घोषणा हुई। उनका निधन 1969 को हुआ था। वे एक उत्साही पुरोहित थे जिन्होंने अथक रूप से सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने पुरोहिताई को उदारता एवं चिंतन में जीते हुए सच्ची मिसाल प्रस्तुत की। तब संत पापा ने ताली बजाकर नए धन्यों को सम्मानित किया। तत्पश्चात संत पापा ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की याद करते हुए उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना की जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा मैं उन सभी भाई बहनों की याद करता हूँ जो मानसिक असंतुलन की बीमारी से ग्रसित हैं और कई बार खासकर युवा आत्महत्या के शिकार होते हैं। आइए हम उनके और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे अकेले ना छोड़ दिए जाएं तथा भेदभाव के शिकार ना बने बल्कि स्वागत और समर्थन प्राप्त करें। उसके बाद संत पापा ने रोम वासियों और विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। अंत में उन्होंने सभी से प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
के दम पे क्या दिल जीत सकते हैं, हो दौलत के दम पे क्या दिल जीत सकते हैं। बंदूक की नोक से क्या सच्चाई दफना सकते हैं, हो दौलत के दम पे क्या दिल जीत सकते हैं, हो दौलत के दम पे क्या दिल जीत सकते हैं।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने धर्माध्यक्षों की धर्म सभा की शुरुआत करते हुए 10 अक्टूबर को वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर में समारोही मिस्सा बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में धनी युवक की चाह पर चिंतन करते हुए सिनोड के अर्थ पर प्रकाश डाला। इसी के मद्देनजर संत पापा ने 5 ट्वीट किया। पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, धर्माध्यक्षीय धर्म सभा मनाने का अर्थ है एक ही सड़क पर एक साथ चलना। आइए हम इस दिन के सुसमाचार में यीशु को देखें, जो सबसे पहले सड़क पर धनी युवक से मिलते हैं, तब वे उसके प्रश्नों को सुनते हैं और अंत में यह समझने में उसकी सहायता करते हैं कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उसे क्या करना चाहिए। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, आज के सुसमाचार में यीशु न केवल अपने कानों से बल्कि हृदय से धनी युवक की बात सुनते हैं। वे उस धनी युवक के सवाल का उत्तर साधारण बातों से अधिक देते और उसे अपने जीवन का वृतांत सुनाने, अपने बारे में बतलाने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, इस धर्म सभा में हमें भी प्रभु और एक दूसरे का सामना करने के लिए समय निकालकर यह सुनना है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहती है। मुलाकात की कला में विशेषज्ञ बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। चौथे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, मुलाकात का अनुभव हमें बदल देता है और अक्सर यह नए तरीकों को प्रस्तावित करता है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। इस प्रकार ईश्वर अक्सर नए मार्ग दिखाते हैं। एक बार जब हम उनके साथ और एक दूसरे के साथ वास्तविक मुलाकात करने में सक्षम हो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। पांचवें ट्वीट में संत पापा ने लिखा, सच्ची मुलाकात सुनने से ही होती है। उधर अपार खुशी के साथ इस घोषणा का स्वागत किया गया है कि कोलंबिया में जन्मी फ्रांसिस्कन सिस्टर ग्लोरिया नार्वेज जिहादियों के चंगुल से आजाद हो गई हैं। उनके अपार साहस, विश्वास और दृढ़ता की कठिन परीक्षा समाप्त हो गई है। एक सुखद परिणाम के साथ आधिकारिक बयान माली के राष्ट्रपति की ओर से आया, जिन्होंने उनकी कभी न डगमगाने वाली बहादुरी की प्रशंसा की। मिशनरी सिस्टर ग्लोरिया का अपहरण जिहादी बंदूकधारियों ने 7 फरवरी 2017 को माली की राजधानी से 400 किलोमीटर दूर बुर्किना फासो की सीमा के निकट कौटियाला में किया था। उसे 4 साल 8 महीने कैद में रखा गया। मामूको के महाधर्माध्यक्ष जीन जेरबो ने पुष्टि की कि सिस्टर ग्लोरिया सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा, मैं अधिकारियों और उन सभी भले लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उसकी रिहाई की है। हमने इस दिन के लिए लंबी और लगातार प्रार्थनाएं की हैं। पिछले साल फरार हुए 2 यूरोपीय लोगों ने पुष्टि की कि सिस्टर ग्लोरिया अभी तक जीवित है। फिर मार्च में उसके भाई को रेड क्रॉस के माध्यम से एक पत्र मिला था जो उसके द्वारा लिखा गया और हस्ताक्षरित किया गया था। सिस्टर ग्लोरिया की रिहाई का सुखद अंत रविवार की सुबह को हुआ जब संत पापा फ्रांसिस ने खुद वाटिकन में उनका अभिवादन किया। उनकी मुलाकात संत पेत्रुस महागिरजा घर में धर्म सभा प्रक्रिया के समारोह ही पवित्र मिसा बलिदान से पहले हुई थी। 10 अक्टूबर को संत पेत्रुस महागिरजा घर में धर्म सभा प्रक्रिया के समारोह ही पवित्र मिसा बलिदान से पहले संत पापा फ्रांसिस ने सिस्टर ग्लोरिया को आशीर्वाद दिया और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 11 अक्टूबर को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में संत जोवानी एटिंडा तैरोइड की दया की धर्म बहनों के धर्म संघ की महासभा के करीब 60 प्रतिभागी धर्म बहनों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका स्वागत किया जो अपने धर्म संघ के 21वें महासभा के लिए एकत्रित हुई है। संत पापा ने नव निर्वाचित परमाधिकारिणी को उनके अभिवादन के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें एवं नए महासलाहकारों को धर्म संघ के संचालन हेतु शुभकामनाएं दी। संत पापा ने कहा, जब सिस्टर नुनसिया ने धर्माध्यक्षीय धर्म सभा के उद्घाटन और अपने धर्म संघ की महासभा के संयोग को चिन्हित करते हुए लिखा, हम पूरी कलीसिया और आपके साथ एकता में रहेंगे, संत पापा ने उन्हें प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया। इस संयोग का लाभ उठाते हुए संत पापा ने कहा कि एक कलीसिया के रूप में हम जो प्रतिबद्धता लेते हैं वह धर्म संघीय धर्म सभा की एकात्मकता को विकसित करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है। विशेष रूप से आप धर्म संघियों की उपस्थिति कलीसिया में अपूर्णीय है। संत पापा ने कहा, जब येसु गलील समारिया और यहूदिया के मार्गों पर चलते थे उनके साथ चेले भी थे और बहुत सी स्त्रियां भी थी। आप उन महिलाओं की उपस्थिति का विस्तार हैं जो येसु के मिशन को साझा कर रही हैं और अपना विशेष योगदान दे रही हैं। आगे संत पापा ने प्रश्न किया कि उनका मूल योगदान क्या है। संत पापा ने कहा कि इसका उत्तर उनके महासभा के विषय में है। बेथनी से नए सिरे से शुरू करना, मार्था की उत्सुकता के साथ और मरिया को सुनना। संत पापा ने कहा, सुसमाचार के माध्यम से हम जानते हैं येसु और चेलों के जीवन में 2 महिलाओं मार्था और मरिया का महत्वपूर्ण स्थान था। यह पुष्टि करता है कि सबसे पहले महिलाओं के रूप में और बपतिस्मा प्राप्त येसु के शिष्य के रूप में कलीसिया में आपकी सक्रिय उपस्थिति है और आप येसु के मिशन में भाग ले रही हैं। महासभा के विषय के उन 2 शब्दों उत्सुकता और सुनना पर गौर करते हुए संत पापा ने कहा, मुझे यकीन है यदि आप बेथनी की बहनों मार्था और मरियम के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वास्तव में एकांत और सुनने में सक्षम होती हैं, तो आप पूरी कलीसिया की यात्रा में अपना बहुमूल्य योगदान देना जारी रखेंगी, खासकर गरीबों की चिंता करना और गरीबों की सुनना। अंत में संत पापा ने पूरी कलीसिया की ओर से उनकी सेवा के लिए सहृदय धन्यवाद दिया और उनकी संस्थापिका संत जोवाना अटिंडा के संरक्षण में सुपुर्द किया। संत पापा ने उन्हें और पूरे धर्म समाज की धर्म बहनों को अपना आशीर्वाद दिया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।